प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए।
ओम शांति। बहुत बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और पद्मा पद्म भाग्यशाली आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं। आप में से बहुत होंगे जो अनेकों बार आए होंगे, जो अनेकों बार आए हैं वो हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, काफी संख्या है। और जो पहली बार आए, तो जो अनेकों बार आए हैं उनका भी कोटि कोटि स्वागत है, और जो पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है। मीठे बाबा का ये स्थान, मधुबन वरदान भूमि कहो, शांतिवन कहो, वरदान भूमि मधुबन कर्म भूमि है, तो कण कण में ऊर्जा है। और वैसी ही कण कण में ऊर्जा इस शांतिवन में भी है। ये नहीं समझना कि सारी ऊर्जा वरदान भूमि केवल मधुबन में ही है। एक बार आदरणीय दादी जी को हम सब ने लिख के दिया, दादी ने कहा मौन भट्टी होगी। बोला मौन भट्टी होगी तो दादी ऊपर होगी ना, क्योंकि सब हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। मधुबन में होगी ना, मधुबन में होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, मधुबन में होगी तो मौन रहने में भी अच्छा लगेगा, मधुबन में होगी तो बहुत शक्ति मिलेगी। मतलब बहुत बहुत सभी बहनों के विचार में मौन भट्टी के लिए सबसे अच्छी जगह मधुबन, एक स्वर से। और दादी ने संकल्प कर लिया कि नहीं, शांतिवन में होगी। और शांतिवन में दादी ने टीचर्स की जो भट्टी रखी थी, क्या उनके संकल्प का प्रभाव था, क्या समय का प्रभाव था कि उस भट्टी में इतना आनंद आया। सायंकाल जब योग करते थे, दादियां योग कराती थी इसी हॉल में, बीच से निकलती हुई जाती थी, और ये लगता था बाप दादा स्वयं चल करके एक एक आत्मा को दृष्टि दे रहा है। पूरे हॉल के अंदर जो साइलेंस रहती थी, रूम्स में भी साइलेंस रहती थी। दादी ने गाड़ियां यहां लगवा दी थी कि कोई किसी को साधन की आवश्यकता न पड़े, यहां से बैठे भोजन पे जाए, भोजन की थाली लगी मिले और सीधा रूम में जाए, कहीं बोलने की दरकार नहीं। जो अनुभव कराया दादी ने, तो ये लगा कि वाह रे भगवान, वाह रे तेरी माया, वाह रे तेरी शक्ति, वाह रे तेरी प्रेरणा ऊर्जा परमात्मा के द्वारा। अब हम सीधे परमात्मा पे आते हैं कि भगवान के द्वारा जो चीज जिस समय जहां निहित की गई है, निश्चित उसमें हमारा 100% कल्याण, ये मान के चलो। इसमें कोई भी अटबट नहीं, कोई भी अगर मगर नहीं, कोई भी लेकिन नहीं, ऐसा न हुआ तो ये भी नहीं। एक छोटे से पंडित जी की जाके बात पूछ लेते हो किसी भी प्रोग्राम में कि पंडित जी इसका मुहूर्त क्या होगा, उन्होंने जो बता दिया तो हम उस मुहूर्त में बड़ा अटूट विश्वास रख कर चलते हैं कि भाई उन्होंने ये मुहूर्त बताया। साल में कोई दिन ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई मुहूर्त नहीं पूछना होता, कौन से होते वो दिन? नवरात्रि के शुरू हो गई, आज से शुरू हो गई ना। ये 9 दिन किसी को किसी से कुछ नहीं पूछना है, क्या करना है, जो चाहे कर लो, शुभ ही शुभ है, ऐसा मानते हैं ना। तो ऐसे ही पूरे कल्प में ये संगम युग नवरात्रि है, शुभ ही शुभ है। हम बच्चों का कभी भी कहीं भी अशुभ हो ही नहीं सकता। तो बाबा जब किसी बात के लिए कोई भी समय निर्धारित कर देता है तो उसमें न तो अटबट है, न लेकिन है, न तो है, ऐसा न हुआ तो, ऐसा कर लिया तो, ऐसा हो गया तो, वो न माने तो, वो न मानी तो, नथिंग। भगवान ने कहा है, बुद्धि में क्या रखना चाहिए? भगवान ने कहा है। तो आज मुझे अचानक कहा कि आपके सामने कुछ मेरी चर्चा हो, तो एक चर्चा बहुत मुख्य है, वो ये कि समय बिल्कुल पूर्व निर्धारित है, फिक्स है, फिक्स है ना, जिसको हम लोग कभी कभी आमना सामना पड़ने पर भाग्य कह लेते हैं, कभी नियति कह लेते हैं, कभी भावी कह लेते हैं। और जो बच्चे मास्टर जानी जानन हार हैं वो क्या करते हैं? वो ड्रामा कह लेते हैं, कह लेते हैं ना। तो हर पल पूर्व निश्चित है, किसी भी पल को हम इधर से उधर कर सकते हैं। आप यहां बैठे हैं, ये भी किसकी मुहूर्त से बैठे हैं? ऊपर वाले की। ऊपर वाले ने आज का दिन हमारे लिए, उर्दू में कहते हैं मुकद्दस, माना बहुत खुशी का दिन, आज का दिन, मुबारक दिन हमारा मधुबन के लिए रखा था। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। तो दिन मुहूर्त ऊपर वाले ने हमारे लिए फिक्स करके रखे, जो हमारे जीवन में घट रही घटनाएं हैं वो भी फिक्स हैं। ये बात जुदा है कि कभी उसके परिणाम हमें पॉजिटिव मिलते हैं, कभी कोई घटना ऐसी भी घट जाती है जिसके परिणाम निगेटिव मिलते हैं, हम कहते हैं क्या ऊपर वाले ने यही फिक्स किया था, देखो ना हमारे साथ कैसा हुआ है। त्वरित लाभ या त्वरित हानि से हम सोच लेते हैं कि ये हमको गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं, उसके भी पीछे जब ऊपर वाले की सोच को समझोगे तो ये लगेगा नहीं, इसमें भी कुछ राज था, इसमें भी कुछ राज था। जो कुछ होता है समय से होता है, कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलता, चाहे जितने हाथ पैर मार लो। बहुत बड़ी बात है, समय के अनुसार ही विश्वामित्र ने तपस्या की थी और बहुत तपस्या की, तो उनसे कहा आकर के देवर्षि नारद ने, हे राजर्षि उत्थिष्ट, उठिए, बहुत तप कर लिया, नहीं हिले, वहीं बैठे रहे। उन्हें राजर्षि की डिग्री नहीं चाहिए थी, पुनः तप में लग गए। दोबारा उसके बाद आए तो उन्होंने कहा, राजर्षि के बाद दूसरा शब्द इस्तेमाल किया और कहा, हे ब्रह्मनिष्ठ, हे योगी, हे तपस्वी, हा? तो भी नहीं उठे। उन्होंने कहा क्या मतलब है? बोले अभी तपस्या पूरी नहीं हुई। तीसरी बार स्वयं ब्रह्मा ने आकर कहा, हे ब्रह्मर्षि, उठो, तपस्या पूरी हो गई। तो ब्रह्मर्षि कहने पर ही वो उठे और उठने के बाद उन्होंने पूछा कि अगर मेरी तपस्या पूरी हो गई है तो मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे मानूं कि मेरी तपस्या पूरी हो गई है? बोले नहीं, पूरी हो गई, तुम मेरी बात को निश्चय विश्वास के साथ लो। तो कहा नहीं, वेद मेरा वर्ण करें तो मैं मान लूंगा कि मेरी तपस्या पूरी हो गई। तो वेदों ने उनका वर्ण किया, तपस्या पूरी हो गई थी। माना वर्ण करने का मतलब समझते हैं? जब कोई चीज वर्ण कर लेती है तो उसका पठन पाठन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप इंसान को आ जाती है और बोलने लगता है। ये बात मैं आपसे क्यों सुना रही हूं, इसके पीछे भाव क्या है? हमारा 2015 भी उस बृहस्पति ने उस ब्रह्मा बाबा ने, उस जगत नियंता ने तपस्या का रखा है ना। 2015 के स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने सुना होगा तपस्या वर्ष। दीदियां कोई ना कोई महावाक्य लास्ट में सुनाती हैं कि इस समान पर सारे दिन आपको चलना है। एक मास के लिए एक समान निश्चित किया गया, रोज हम उसको सुनते भी हैं। तो तपस्या वर्ष चल रहा है, लेकिन कहीं वो तप की अग्नि नजर आ रही है? जहां तपस्या होती है वहां क्या होता है? वहां अग्नि होती है। जहां अग्नि होती है वहां सब कुछ क्या हो जाता है? स्वाहा हो जाता है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पर तप की अग्नि होती है वहां कलुषता बचती नहीं है। कोई भी बुराई, कोई भी विकर्म, कोई भी चीज, हम कर्मातीत बनना चाहते हैं उसके पहले विकर्माजीत बनना पड़ेगा। विकर्माजीत बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमको तपोनिष्ठ बनना पड़ेगा। तपोनिष्ठ बनना चाहते हैं तो उसके लिए समय का क्या करना पड़ेगा? सदुपयोग करना पड़ेगा। श्वास, समय, संकल्प सब सफल करने पड़ेंगे। जब हर लय, हर आने जाने वाली श्वास उस स्मृति को एक मिनट भी मिस न करती हो। हम आए, हमने कहा हाँ हाँ, हमने योग लगा लिया। हम मधुबन में भी, यहां भी आए हुए भाई बहनों को देखते हैं, योग कर लिया, क्लास कर ली, हो गया, कर लिया। कहाँ कर लिया? क्या इतनी तपस्या से हम सेटिस्फाइड हैं? जो तप यहां तो कोई काम नहीं है। हम जब अपने घरों से सेंटरों पे आते हैं तो अगर 6:30 से 7 का योग है तो पहुंचते पहुंचते 7:45 हो जाते हैं। उसमें भी 10 मिनट हम बाबा की याद में एकाग्र हो पाते हैं, अपने आप को समेट के लाते हैं कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं बाबा की संतान हूं। ऊपर गए और पता लगा कि 10 मिनट में ही कोई इधर से गुजर गया, किसी की कोई आवाज आई और हम डाइवर्ट हो गए, या बाहर से नहीं आई, अंदर से कोई आवाज आ गई। अंदर से आ गई कि चलते चलते मैंने वार्डरोब की चाबी तो उसी में लगी छोड़ दी है। हाँ, घर में नौकर आएगा तो फिर क्या होगा? घर में फलां आएगा फिर क्या होगा? अब वो योग नहीं लग रहा है। आए थे हम क्लास में ना योग करने, आधा घंटा योग, लेकिन हमारे आधा घंटे योग में भी अनेकों बार आवागमन हो जाता है, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, इधर उधर डाइवर्शन। तो क्या हम माने कि ये आधा घंटे का योग हमने बढ़िया किया? अच्छा, अगर वाकई 6:30 आ गए और 7 बजने वाला है तो 4 बार घड़ी देखते हैं, दीदी अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अगर हम 5 मिनट अधिक कर लेंगे कुछ हो जाने वाला है क्या? अगर तपस्या वर्ष है, एक घड़ी, आधी की पुनिया आधी। जैसे ये 9 दिन है, 9 दिन में बिल्कुल लोग कुछ नहीं खाते, फल खाते हैं, कुछ फल भी नहीं खाते, जल पीते हैं, कुछ जल भी नहीं, वो लौंग खा के रहते हैं। कितना 9 दिन में तप कर लेते हैं पेट का। लेकिन पेट का नहीं चाहिए, मन और बुद्धि का भी चाहिए। जो रूटीन दिनचर्या है, अमृत वेले उठने की 4 से 4:45 हमको योग करना है, तो 4 से 4:45 तो रूटीन है, लेकिन हमें उसे और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। क्या इतने से काम चल जाएगा? तो कोशिश करें कि हम उधर क्या करें, 3:30 कर दे। आधा घंटा तो बढ़ेगा ना, आधा घंटा हम उधर बढ़ा दें। जब हम इधर जाते हैं क्लास में तो 15 मिनट बाबा के कमरे के लिए रख लें जाते समय, 15 मिनट आते समय, तो इधर भी हमारा क्या होगा, आधा घंटा बढ़ जाएगा। 1 घंटा बढ़ गया ना, और उसके बाद जो हर घंटे में दो मिनट योग करते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल का, उस दो मिनट की जगह अगर हम पांच कर लें तो पांच मिनट माना 12 को गुणा करिए 5 से, एक घंटा हो जाता है, बढ़ गया एक घंटा। सायंकाल 6:30 से 7:30 जो करते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं करते हैं वो संकल्प बांध कर जाएं कि हमको करना ही करना, कुछ भी हो जाए हमको सायंकालीन करना ही करना है। और जो रात्रि सोने से पहले 9:30 से 10 करते हैं उसे 9 से 10 कर लें, कुछ तो बढ़ेगा मामला। तो हमें अपने ही ये दिन के 12 ही घंटे हैं, ज्यादा होने वाले नहीं है, और दिन और रात मिला के 24 घंटे हैं। हमें इसमें से ही किसी तरह से कट एंड कुड योर प्रोग्राम, कुछ काटना है कुछ छांटना है और अपनी तपस्या की अवधि को बढ़ाना है, क्योंकि ये समय लौट कर आने वाला नहीं है। हमारा एक कोर्स हो गया जो स्टार्टिंग का था, उसके बाद रिवाइज कोर्स हो गया, उसके बाद रियलाइजेशन कोर्स हो गया, उसके बाद एक तपस्या वर्ष हो चुका है, ये दूसरी बार पुनः घोषणा हुई है तपस्या वर्ष की। तो इस तपस्या वर्ष में हम सब अपनी दिनचर्या को चेक करके देखें कि क्या वास्तव में हमारी विश्वामित्र की तरह तपस्या हो रही, हम अपनी तपस्या की इन घड़ियों को 8 मास बीत चुके हैं, बचे 2, 10वां तो चल ही रहा है, उसमें भी 7-8 दिन गुजर गए हैं। ऐसा ना हो कि जब 2015 की समाप्ति की घोषणा हो रही हो तो उस समय हम सोचें चलो कुछ योग कर लेते हैं, अरे ये तो तपस्या वर्ष था, गुजरा जा रहा है, गुजरा हुआ समय लौट के नहीं आता, आता है नहीं आता ना। तो अपने को क्या करना है, बाबा अपने समय से आया और बाबा अपने समय से अव्यक्त हो गया, दादियों ने भी निष्ठा की, तपस्या की, हमारी पालना की, और एक बहुत सुंदर गुलदस्ता जो दादियों का दादाओं का हमारे पास था वो आज धीरे धीरे वो भी अव्यक्त वतन में एडवांस पार्टी में जाता जा रहा। जो हमारे पास हैं वो हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए ये दादियां तपोनिष्ठ हैं, दर्शनीय मूर्त हैं, इनके दर्शन मात्र से ही हमें बहुत कुछ मिल सकता। हम सोचते हैं दादी आए, दादी क्लास कराएं, दादी ऐसा कराएं, तो ये उनकी अहर्निश तपस्या के कुछ क्षण हैं कि जब वो हमारे बीच होती हैं, हमें दृष्टि दे रही होती है। दादी जानकी जी कहते हैं जब भी मैं बोलना शुरू करते हैं मैं कितना ही अपने को नियंत्रित करूं नहीं कर पाती, मन करता है कलम उठाओ लिखना शुरू करो, एक भी मोती गिर ना जाए रह ना जाए, दादी जो बोल रही है उसको एज इट इज रख लो। बोला सुनो बंद करो उसको, बंद कर दिया। अब दादी कह रही है तो थोड़ी चालू रखूंगी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, सुनो समाओ और स्वरूप बन जाओ। मतलब गति बहुत फास्ट है समय की, हम भी बंधे हुए हैं नियति से, समय से, ड्रामा से, भाग्य से। आने वाले समय में देख रहे हैं ना कितना फास्ट जा रहा है। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, वो जरा सा बटन दबाते हैं अपने मोबाइल का, बोला क्या चाहिए बोलो बता देते हैं। एक को हमने कहा सीख लो कुछ सीख लो, हमसे सीख लो या अपने ही फादर से सीख लो, कुछ सीख लो, ये नहीं तो रह जाएगा और फिर ये सोचोगे अब हम ये काम किससे करवाएं। तो उस बच्चे ने हमें जवाब दिया, जय हो गूगल महाराज की, बड़ा सब मिल जाता है उसके अंदर, सवाल ये नहीं है, बेशक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जगत ने आपको बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जब वो रिसीव होगा तब ना मिल जाएगा। आने वाले समय में जैसे यहां 20,000 भाई बहन जब हो जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने अपने मोबाइल लगाते रहते हैं कि घर खबर कर दें हम आ गए, मगर 10 बार लगाने के बाद कहीं 11वीं बार लगता है, नहीं लगता ना। तो ऐसे ही जब समय की विभीषिका, समय भीषण हो जाएगा, तो न गूगल महाराज काम करेंगे और न ये मोबाइल काम करेंगे। बाबा ने कहा हुआ है कि ऐसे समय पर आपकी केवल टचिंग पावर और कैचिंग पावर ही काम करेगी। जितना जितना आपके अंदर क्या होगी, निर्मलता होगी, जितनी निश्चलता होगी, उतना ही आप रिसीव कर सकेंगे। ऐसा नहीं रिसीव करते नहीं है, आज आप आज भी रिसीव करते हैं, आज भी कहीं कोई घटना हो रही होती है तो आपको ऐसे ऐसे होता है, आप सुबह से कहना शुरू करते हैं आज मन नहीं लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है, लेकिन कहां क्या हुआ है, आपके सामने क्लियर पिक्चर नहीं है। आप रिसीव कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, कहीं कुछ हुआ है, वाइब्रेशन आपको आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट टीवी पर नहीं आ रहा है कि वहां ये हुआ है, टच हो रहा है, कैच क्यों नहीं हो रहा है। कैच इसलिए नहीं होता कि हमारी बुद्धि चारों ओर एंटीना खुला हुआ है, सब तरफ से बहुत कुछ रिसीव करती है, तो जहां से बहुत अधिक संवेग आ रहे हैं उनको नहीं सर्च कर पा रही है। जब ये बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर आएगी तब हम क्लियर कट उस तस्वीर को कैच कर सकेंगे कहां से क्या हो रहा है। तो उसके लिए शर्त है कि जितने निश्चल होंगे, जितने निर्मल होंगे, जितने अंतर्मुखी होंगे, उतना ही हमारी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो समय बाबा हमें देता है तपस्या के नाम पर, ये समय देता है बाबा से मिलन के नाम पर, मिलने आए ना बाबा से, तो उस महाशक्ति का आवाहन कर रहे हैं आप कि वो हमारे बीच हो, हम उनसे मुलाकात करेंगे, भले ही वो नयन मुलाकात होगी, लेकिन उस अव्यक्त वतनवासी का इस धरा पर आना कितनी बड़ी घटना है। विश्व के लोग एक चमत्कार मानते हैं कि ये बहुत बड़ी अद्भुत घटना है कि भगवान यहां हमसे मिलने आया, लेकिन बाप अपने बच्चों से मिलन मनाने आया। हम उन क्षणों को भी अपने में समेट सकते हैं, अपने में समा सकते हैं, अपने में उन क्षणों को रिसीव करके एकदम लॉक कर दे, ये चीज हमने रिसीव कर ली, अब हम लॉक कर दे रहे हैं, और जब चाहे तब हम इन क्षणों को दोहरा सकते हैं। लेकिन कब, जब हमारे अंदर इतनी एकाग्रता होगी तब। तो समय के साथ साथ जैसे हम समय के महत्व को जानते हैं कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस समय में कुछ भी हम कर सकते हैं और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, हमारी जो यज्ञ की वेदी है वो शुद्ध रहे। पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए कि हमारी वेदी शुद्ध है। पुराने जमाने में लोग कहानियां सुनाते थे कि वेदी में कोई ना कोई आसुरी शक्ति कुछ ना कुछ डालकर अशुद्ध कर देती थी, तो हम समझते थे कि वो यज्ञ के लिए जो कुंड बनाते हैं शायद उसमें डाल देते होंगे इसलिए अशुद्ध हो जाता है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया कि वो कुछ नहीं डालते, हमारे ही अभिमान की हड्डियां जब हम योग लगाते हैं और उस यज्ञ कुंड में पड़ जाती हैं, क्या होता है, पूरी वेदी अशुद्ध हो जाती है और हमारा अहम हमको नीचे ले आता है। अब हमारा योग में मन नहीं लगता और हमको लगता है बस उठ जाए यहां से, कब योग खत्म हो कब हम जाएं और उसको जाके समझा के आए कि आज बोला तो बोला, आज के बाद मत बोलना। हाँ, तो ये जो हड्डी पड़ गई अहंकार की, अहम की, उसने क्या किया, लगाने तो हम योग बैठे थे, हमारी सारी वेदी अशुद्ध कर दी। कभी लोभ की बूंदें, जो कहते हैं ना रक्त की बूंदें पड़ गई, तो वो पड़ गई, हमारा ही लोभ हमें योग लगाने नहीं देता, हमारी ही विकृति। हमने कहा ना, अगर कर्मातीत बनना है तो विकर्माजीत बनना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, बहुत बड़े तो आपने जीत लिए, बहुत बड़ों को तो आपने बिल्कुल मेन डोर बंद कर दिया कि कोई नहीं घुसेगा, ना काम घुसेगा, ना क्रोध घुसेगा, ना लोभ घुसेगा, ना मोह घुसेगा, ना अहंकार घुसेगा। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो आपको समय समय पर पीड़ा देते हैं, और ये पीड़ा उसी तरह की है जैसे कोई यज्ञ करने चलो और वेदी अशुद्ध हो जाए। मन के चिंतन की धारा का टूट जाना, उसका सतत प्रवाह रुक जाना। कहां चले थे? बाबा से मिलन मनाने ऊपर, योग लगाने के लिए, लेकिन यहां डाइवर्ट हो गए। यहां किसी का फोन आ गया और हम बिल्कुल अव्यवस्थित हो गए। अब हम, लेकिन एक बात बताइए, वहां जा सकते हैं जहां से आए? जाएंगे तो भी कल बाबा से मिलन मना के तब जाएंगे। अच्छा, आज ही चल देंगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आए हैं बाबा से मिलने, मिल के ही जाते हैं, छोड़ो अब जो होना था वो तो हो ही गया। ये भी मन में संकल्प आते हैं, लेकिन फिर मन किसी काम में यहां होते हुए नहीं लगता। मन वहीं पहुंच जाता है बार बार जहां कुछ हुआ है। हमारे स्वर्ग में है ये मधुबन स्वर्ग की वैकुंठ भूमि है, और हम यहां आने के बाद भी एक उस छोटे से मोबाइल के कारण कहो, डिब्बे के कारण कहो, क्या होते हैं, यहां नहीं रह पाते। तो विचार करके देखें कि बाहर से कोई भी नहीं कुछ करता। आदरणीय परदादी निर्मल शांता दादी एक बार स्टेशन पे कानपुर से क्रॉस कर रही थी, तो दादी ने हम सब से, हम लोग भोजन देने गए तो एक सवाल पूछा कि समुद्र में किस किस ने स्नान किया है। लहरें सामने से आती हैं तो क्या करते हैं, और नीचे से आती हैं तो क्या करते हैं? तो सब मौन, दादी का मुख देखते रहे, मुस्कुराते रहे, एक दो उत्तर दिए। वरिष्ठ भाई भी थे हम लोगों के साथ में, एक दो उत्तर दिए। दादी बहुत हंसी, अरे बोली, मैं उन लहरों का नहीं पूछ रही हूं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में भी लहरें आती हैं, कई बार परिस्थितियां सामने से आ जाती हैं और कई बार अंदर से आ जाती हैं। तो जब अंदर से आती हैं तो क्या करना पड़ता है? हाई जंप लगाना पड़ता है। अगर आपने जंप नहीं लगाई तो उन लहरों के साथ आती हुई बालू, आती हुई रेत आपके पैरों को समेटती जाती है। थोड़ी देर खड़े रहिए, 10-15-20 मिनट खड़े रहिए, 10 बार लहरें आई गई, इतनी देर में आपके पैर इतने इतने बालू में अंदर चले जाएंगे। और जो सामने से आती हैं, लोग पीठ दे लेते हैं ताकि उसका सीधा प्रहार सीने पर ना हो, पीठ पर हो। तो यही चीज है कि जब जब कोई परिस्थिति, कोई बात आती भी है तो हम उसमें उलझे नहीं, उस कारण को खोजे नहीं, क्यों आई, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। कुछ भी आए, आएगा, लेकिन जाएगा ना वापस। निवारण खोजे। सहज निवारण है पीठ दे ली, सहज निवारण है कि थोड़ा सा जंप लगा गए और आगे बढ़ गए। तो अपने आप को इस तपस्या वर्ष में इस समय के मूल्यांकन को ध्यान रखते हुए कि एक तो मधुबन वरदान भूमि में है, दूसरा तपस्या वर्ष चल रहा है, तीसरा प्रभु मिलन के अमूल्य क्षणों को अपने जीवन में समेटने आए हैं, चौथा जो जनरल योग करते हैं, जो जनरल क्लास करते हैं वो नहीं करनी, हमें कुछ खास करना है, क्योंकि ये मुहूर्त स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने हमें बताई है, जो हमारा माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, तीनों ही हैं, 3-in-1 है, उसने बताई है। इस मुहूर्त को हमें किसी भी प्रकार से मिस नहीं करना है। इसका जितना लाभ हम ले सकते हैं उतना लाभ हम ले लें, नहीं तो होगा क्या? होगा ये कि जिस तरह से, सुना है ना आप सबने कहानी सुनी होगी कि एक बार बादशाह अकबर ने एक को सजा दी थी कि तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा। खड़ा रहा, उन्होंने उससे पूछा, खड़े रहे थे, बोला जी। बोला क्या हुआ था, क्या सबूत है? बोला आपके महल की रोशनी नजर आ रही थी, मैं बता सकता हूं कितनी रोशनी तालाब के सामने जल रही थी। बोला अच्छा, तब तो तुम्हें फिर सर्दी लगी नहीं होगी, उसकी तपिश से तुम गर्म रहे होगे। तो जब बीरबल ने यह सुना तो उन्होंने कहा ये तो अन्याय है, कहां महल और कहां सरोवर, कैसे उसकी तपिश वहां पहुंची होगी। तो बादशाह को उसका जवाब देने के लिए बीरबल ने 4 बांस लगा के और खिचड़ी रख दी पकाने के लिए, नीचे उसको आग जला दी। अब सरकारी कामों के लिए बीरबल बुलाए जाने लगे और बीरबल हर बार यही जवाब देते थे, खिचड़ी पक जाए तो हम आते हैं। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया। बादशाह ने पूछा कि आखिर कैसी खिचड़ी है और क्यों नहीं पक रही है, खुद चल के देखते हैं। तो वहां देखा कि 4 बांस लगे हुए थे। तो उन्होंने जाके कहा कि बीरबल ऐसे कहीं खिचड़ी पकती है, इनको उतारो और सीधा उसको चूल्हे पे रखो, तब पकेगी। बोला हुजूर मैंने तो सोचा ऐसे पक जाएगी। जब वो दूर खड़े होके महल की रोशनी से अपनी सर्दी दूर कर सकता है तो भला मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो बीरबल ने तो बादशाह को समझाना चाहा, लेकिन हम सब भी ऐसा ही करते हैं, हमारी भी खिचड़ी पक रही है। हम बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ करो तो तीव्र करो, संकल्प करो तो दृढ़ करो, लेकिन हम क्या करते हैं, आलस और अलबेलेपन के बांस लगा लेते हैं। खिचड़ी हमारी भी पक रही है, पुरुषार्थ हम भी कर रहे हैं, हमने भी 4 बांस लगा रखे हैं, है ना, कहीं रुआब के, कहीं जो है जोश के, कहीं आलस्य के, कहीं अलबेलेपन के, और ऊपर रख रखा आराम से कि पक रही है ना, पुरुषार्थ करते रहे, योग करते रहे। लेकिन ये हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें इसी 12 घंटे में से समय निकाल कर अपने ताज को, तिलक को, तख्त को संभालना पड़ेगा। अगर हम अपने ताज, तिलक, तख्त की तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कब होगी, बताइए। बाबा ने तो बहुत क्लियर कह दिया ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डेट तो मैं बताऊंगा नहीं, बच्चों ने पूछा भी कि बाबा से कई बार, बाबा डेट बता दीजिए कब होगा, तो बोले अरे हो जाएगा। अपने ज्योतिषी बच्चों से पूछो अगर डेट पूछनी हो तो। अभी अभी एक न्यूज आई थी नासा की, अखबारों में भी आई थी, व्हाट्सएप पे आई थी कि साहब 15 दिन अंधकार रहेगा। क्या क्या तैयारियां कर ली लोगों ने, 15 दिन में अनाज एकत्र कर लिया, 15 दिन में रोशनी का प्रबंध कर लिया, 15 दिन में बैटरी या केरोसिन रख लिया, क्या किया। और हम अगर ये स्थूल चीजें, स्थूल साधन जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलेगा, उससे काम चलेगा, उन व्यवस्थाओं से कुछ होने वाला नहीं। इन सब प्रकृति की आपदाओं को झेलने के लिए अवस्था चाहिए, व्यवस्था नहीं। थोड़ी बहुत व्यवस्था कर लेंगे आप, लेकिन इस थोड़ी बहुत व्यवस्था के चलते अवस्था अगर अच्छी है तो आप प्राकृतिक आपदाओं को आराम से झेल जाएंगे। तपस्या अच्छी है तो सब कुछ नथिंग न्यू के एक स्लोगन के साथ हंस के झेल जाएंगे। हमें हमारे बाबा ने पहले ही बता दिया था, हमें हमारे टीचर ने पहले ही बता दिया था ये होने वाला है, हमारे लिए तो नथिंग न्यू है। लेकिन जब हम उतनी तपस्या करेंगे, उतने योगनिष्ठ होंगे, उतने तपोनिष्ठ होंगे, जब उतना हमने समय श्वास संकल्प को सफल किया होगा, तब हम अपनी अवस्था से इन सब बातों का सामना कर पाएंगे। और जब थोड़ा सा अंधकार होता है तब संसार में अनेक घटनाएं घटती हैं। जब 15 दिन रात अंधकार होगा उस समय क्या होगा, विचार किया कभी? या ये सोच लिया जब होगा तब देखा जाएगा? हाँ, किसने देखा है, होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे ही एवं ही कहें। बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं जब आपस में चर्चा होती है, बोले अरे ऐसे ही, जब अफवाह उड़ाई जाती है ना तो कुछ नहीं होता, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है ये कपोत वृत्ति है। कबूतर जैसे देखता है ना, बिल्ली मेरी ओर नहीं आ रही, आंखें बंद कर लेता हूं, लेकिन बिल्ली तो मुझे देख ही रही है ना, वो आती और झपट्टा मार के ले जाती है। तो इस काल की मुट्ठी में हम सब बैठे हुए बंद हैं, थोड़ा दबा देगा चले जाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसे ही जाएंगे बिना व्यवस्था बिना अवस्था के? तो व्यवस्था तो भगवान ने दी कि 2015 में तपस्या कर लो। पहले बाबा अक्सर करके पूछा करते थे कि बच्चे प्रकृति मेरे पास आती है, प्रकृति इजाजत चाहती है, बोलो दूं, बोलो दूं? नहीं बाबा, अरे अभी कैसे, हमने कभी सर नहीं हिलाया ऐसे कि हाँ बाबा दे दो चलेगा, हम तैयार हैं। हमेशा हमने यूं कहा, प्रकृति ने रिहर्सल करने शुरू कर दिए। लेकिन ये रिहर्सल एक एक स्थान पर अलग अलग होते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो रिहर्सल हो रहे हैं, आप लोग एक दो की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक समय आएगा जब ये पांचों तत्व एक साथ नाचेंगे, एक साथ अपने कृत्य करेंगे, एक साथ हर जगह प्राकृतिक विस्फोट होंगे, उस समय क्या करोगे? तो उस समय क्या काम आएगा, व्यवस्था काम आएगी, अवस्था काम आएगी? अवस्था काम आएगी ना। तो इस अवस्था को कैसे बनाएंगे? ये मत समझना कि ये 9 दिन नवरात्रि के केवल मधुबन में हैं, तो यही, ये तो सौभाग्य है कि मधुबन में हैं। यहाँ भोजन बना बनाया है, रहने की व्यवस्था फिट एंड फाइन है, आपको स्वच्छता के लिए भी सुबह सुबह उठ के कुछ करना नहीं है, झाड़ू उठानी नहीं है। तो इस समय को, ये जो गुजर रहे घंटे हैं, जितने दिन भी हम यहां हैं, जितना योग शक्ति को संचित कर लें, जितना दादियों की दृष्टि को अपने अंदर समा लें, जितनी तपस्या कर लें, ये हमारे लिए अनमोल है। वैसे तो संगम युग पूरा अनमोल है, पूरे का पूरा संगम युग हमारे लिए नवरात्रि है। तो पूरे संगम युग पर हम तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। बाबा ने हमको वैसे ही ब्रह्मर्षि बनाया ना, वो तो उन्होंने मांगा था कि हमको वेद वरण करें, लेकिन बाबा ने तो खुद ही कह दिया कि मैं तुमको वेदों का भेद शास्त्रों का सार सब समझाता हूं। ये दादियां बार बार बुलाती हैं, कभी माताओं की भट्टी करके, कभी युगलों की भट्टी करके, कभी जो है कन्याओं की करके, कि हम में से कहीं कोई खलिश, कहीं कोई चुभन, कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको भी निकाल दें, उसको भी चुन के बाहर कर दें। लेकिन करना किसने है, करना किसने है? हमने करना है ना। दादियां एक अच्छे सर्जन की तरह बता देंगी कि देखो बहन यहां ये चीज गड़बड़ है, दादियां हमें बता देंगी इस गोली से ये फायदा होगा, इस दवा से ये लाभ होगा, इस अभ्यास से ये पुरुषार्थ तेज होगा। लेकिन करना किसने, करना तो हम नहीं है ना। तो जितना इस समय के महत्व को जानते हुए हम अपने आप को उस तरह तैयार करेंगे, उस समय के मूल्य को मूल्य देंगे, तो हम अंतिम समय अपनी अवस्था के अनुसार सारी व्यवस्था बना पाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, ड्रामा। ड्रामा में ऐसा ही होना था। कोई पल फिक्स नहीं है, कोई नहीं कह सकता अरे किसने देखा अभी तो मैंने बहुत जीना है। किसने देखा, आज ही हमारे बीच में सुबह सुबह कुछ हुआ है, तो कुछ कुछ किसी ने देखा नहीं क्या होता है। होने वाली घटनाएं होती रहती हैं, फिर हम नियति कह के, भाग्य कह के, ड्रामा कह के तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन अभी कलम उस विधाता ने हमें पकड़ाई हुई है, हम उस कलम के द्वारा लिख सकते हैं। अभी भी अगर ये कहें कि इस मास दो मास का समय है, ढाई मास का समय है, अभी भी अगर पुरुषार्थ की गति को बढ़ा लें तो हम अपनी अवस्था को भी व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने समय को मूल्य दे सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, समय गुजर गया। संसार से रावण जब जाने लगा था तो राम ने कहा था लक्ष्मण से कि जाओ, संसार का बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहा है, इससे कुछ ले आओ, ज्ञान ले आओ। बोला अरे ये क्या ज्ञान देगा। बोला फिर भी जाओ। गए, कहा भैया ने भेजा है, आप जा रहे हैं, कुछ बताते जाइए। बोला क्या लोगे लक्ष्मण। अच्छा जाओ तीन पत्ते ले आओ। ले आए, उन्होंने कहा इनको लगा दो। अपने सामने ही तीनों पत्ते लगवाए, एक पत्ता स्वर्ण का हो गया, एक चांदी का हो गया, एक पत्ते का पत्ता ही रहा। बोला बस मेरा इतना ही ज्ञान है, जो पत्ता समय से लगाया गया वो स्वर्ण का हो गया, जो एक पल के बाद लगाया गया वो चांदी का हो गया, और जो उसके एक पल बाद लगाया गया वो पत्ते का पत्ते ही रह गया। तो हमने क्या करना है, अपने हाथ में जो समय है उसको स्वर्णिम बनाना है, चांदी का बनाना है, या यूं ही गुजर जाने देना है। तो देखते देखते हमारे सामने बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब इस परिवर्तन की यही एक कड़ी है कि हम तपस्या करके तपोनिष्ठ बन जाएं, अपनी अवस्था को संभाल लें, ताकि आने वाली चाहे अंदर की लहर हो चाहे सामने से लहर हो, हम बहुत वीरता के साथ उनका सामना कर लें, बहुत अच्छे से हम उनको व्यवस्थित कर लें और अपनी अवस्था को न बिगड़ने दें। होगा सब अचानक, हमको एवर रेडी रहना है। हम बाबा को नहीं कह सकते आपने तो बताया ही नहीं था कि पेपर इसमें से होगा, कह सकते हैं बाबा को ये कह सकते हैं कि बाबा आपने तो बताया ही नहीं था कि आप यहां से पेपर लोगे। हर चीज ओपन करके रखी, उस जगत नियंता ने किसी भी चीज में कोई कोताही नहीं की है, हर बात बता के रखी है, कहां से पेपर होगा, कैसे होगा, एक पल के लिए होगा, ये सारी दुनिया ही हमारे लिए पेपर होगी। तो ये विचार करने वाली चीज है कि इस समय के महत्व को समझें। अभी हम आ रहे थे तुमने देखा आज नवरात्रि का प्रवाह है, हर एक उस देवी की भावना से आराधना करता है, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वयं देवी बना रहा हूं। यहां आते हैं तो बड़े फक्र से कहते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा हमें स्वयं पूजनीय बना रहे हैं, बनना हमें है, श्रृंगार कौन करेगा, हमको खुद को करना है। तो अपनी इन इंद्रियों का श्रृंगार करने के लिए हम तैयार हो जाएं। समय हमारे सामने मुनादी कर रहा है, ये कभी वापस नहीं आता। आज का दिन बहुत सुकून से है, कल का भी इतना ही सुकून से गुजरे। हमें याद है कि बाबा ने कहा, रोज रोज तुम त्रिवेणी में स्नान करो, तो त्रिवेणी कौन सी है? वो गंगा यमुना और सरस्वती वाली त्रिवेणी नहीं कि वहां जाके स्नान करें। बाबा कहता है, वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा, वाह रे मैं। हमारा आज का दिन वाह रे बाबा अच्छा गुजरा ना, वाह रे ड्रामा आज मेरा इतना अच्छा पार्ट रहा, वाह रे मैं। तो अपने स्वरूप को सामने बार बार लाएं, आज के दिन के लिए उसका शुक्रिया करें। रात्रि को जब योग करते हैं और सुबह उठते हैं तो भी कि वाह रे बाबा तूने मुझे ही चुना, इस पूरे राजस्थान से, पूरे महाराष्ट्र से, अरे किसी और को चुन लेता तब तो, ये मेरा भाग्य है कि भगवान ने मुझे चुना। कितना ना शुक्रिया करो, कितना ना अपने पार्ट की सराहना करो। तो मुझे स्वयं को समझना, स्वयं के स्वरूप को समझना है, और जो भाग्य विधाता ने समय दिया है उस समय को समझना है। जब उस समय का मूल्य रखेंगे तो केवल ये 9 दिन के लिए खुश नहीं होंगे कि हमारी नवरात्रि मधुबन में गुजरी, बहुत अच्छे दिन थे, बल्कि हमारी नवरात्रि तो रोज है, पूरा संगम युग हमारी नवरात्रि है। तो अपने आप को सदैव, अपनी पीठों को हमारी नवरात्रि, हमारे भाग्य विधाता ने पूरे युग के अनुसार दी हुई है और हमारे लिए हर पल श्रेष्ठ है, हमें उसको श्रेष्ठ बनाना है। तो जब हम इस भाव से चलेंगे तो अपने आप को अवस्था और व्यवस्था में कहीं स्टैंड कर पाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे अरे अभी तो हमको आए ही 2-4 साल हुए हैं, बाबा ने आते ही भर्ती वानप्रस्थ में कर दी है, क्या करें। बाबा ने कहा, बहुत कर लिया, बहुत खेल लिया, बहुत खा लिया, अभी क्या करना है, आए ही तपस्या के समय हो, आए ही तपस्या वर्ष में हो। तो इस समय को मूल्य देना और तभी अपने इस संगम युगी पुरुषोत्तम युग को सफल कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, पूछो क्या ले जाना है, आए कहां से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है, शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना, मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना, वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को।